ये दुनिया सैकड़ों कहानियों का मजमुआ है। हर शख्स में एक कहानी है और उस कहानी में कई कहानियां। मानो कहानियों का बड़ा सा ढेर हो जिसमें कुछ कहानियां अनसुनी रह जाती हैं। स्टोरी टेलिंग की जब बात हो रही है, aren't we all crazy about stories? बचपन में चाहे वो नानी अम्मी का कहानियां सुनाना हो या कार्टून्स में मजेदार कहानियों का लुत्फ उठाना हो, चाहे वो फिल्म्स हो, रेडियो शोज हो या दोस्तों के साथ गप्पे मारना क्यों ना हो, उनमें एक कहानी जरूर होती है और उसी से हमारी दिलचस्पी कायम रहती है। आदाब, मैं हूँ फौकिया वाजिद और सोच कास्ट पे आपके सामने हाजिर है उर्दू पॉडकास्ट आओ सुने, जिसमें हम आपको कुछ दिलकश कहानियों से रूबरू करवाएंगे। कृष्ण चंद्र की कहानी, लखपति बनने का नुस्खा। जब मैं 8वीं में चौथी बार फेल हुआ तो घर से 1000 रुपए और कुछ जेवर चुराकर बंबई भाग आया। यहाँ 3 महीने में टाइपिंग का काम सीख के मैंने एक दफ्तर में अर्जी दाग दी तो कंपनी का मालिक मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, मगर हमको तो एक लड़की चाहिए। मैंने कहा, आजकल लड़की और लड़के में ज्यादा फर्क तो नहीं रहा है। लड़कियां पतलून पहनती हैं, मैं भी पहनता हूँ। लड़कियां बुशर्ट नुमा ब्लाउज पहनती हैं, मैं ब्लाउज नुमा बुशर्ट पहनता हूँ। लड़कियों के बाल कटे हुए होते हैं, मेरे बाल भी कटे हुए हैं। फिर मैं किस तरह किसी लड़की से कम हूँ? कंपनी के मालिक ने मेरे सामने मेरी अर्जी के 4 टुकड़े कर दिए और बोला, तुम तो अहमक हो, चले जाओ। मैं चला आया। फिर मैंने 3 महीने का कोर्स लेके बिजली के पंखों की मरम्मत का काम सीखा और काम सीख के एक कंपनी में अर्जी दी जो यही काम करती थी। कंपनी का साहब बोला, क्या तुम पंखे के पुर्जे तोड़ सकते हो? जी नहीं, जोड़ सकता हूँ। क्या तुम बिजली के पंखे इस तरह जोड़ सकते हो कि हर 3rd महीने फिर उनके मरम्मत की जरूरत पड़ जाए? साहब ने फिर पूछा। जी नहीं, मैंने फखरिया लहजे में कहा, मैं बिजली का पंखा ऐसे उम्दा मरम्मत करके दूंगा कि 1 साल तक उसका 1 पुर्जा तक खराब न होगा। तो फिर तुम हमारे काम के आदमी नहीं हो, साहब ने जवाब दिया और मेरी अर्जी के 8 टुकड़े कर दिए। इसके बाद मैं एक स्ट्रक्चरल स्टील मिल के दफ्तर में गया और बड़े साहब से जाकर बोला, मुझे काम चाहिए। कैसा काम? वो बोले, जैसा भी काम हो मैं करूंगा, मैंने जवाब दिया। वो बोले, मगर तुम क्या काम कर सकते हो? मैं बोला, मैं फर्श पर झाड़ू देने के काम से आपके दिमाग में झाड़ू फेरने तक का काम कर सकता हूँ। मेरा जवाब सुनकर वो मुस्कुराए, बोले, तुम्हारे जवाब से मालूम होता है कि तुम सेठ कस्तूरी चंद के दामाद हो। मैंने कहा, जी नहीं। वो बोला, तो फिर तुम जरूर सेठ धतूरी चंद के नवासे हो। मैंने कहा, मैं वो भी नहीं हूँ। वो बोला, तो फिर तुम जरूर सेठ फितूरी चंद के ममेरे भाई के चचेरे भाई के फुपेरे भाई के। उसका दम फूल गया। मैंने कहा, जी मैं वो भी नहीं। तो वो कड़क कर बोला, तो फिर तुम यहाँ क्या करने को आए हो? गेट आउट। गेट आउट होकर मैं चलने लगा। चलता रहा और सोचता रहा, अब मैं क्या करूं? माँ के जेवर खत्म हो चुके थे और 1000 में से सिर्फ 112 रुपए बचे थे। चलते चलते मैंने गुस्से में एक बिल्डिंग की दीवार को मुक्का मारा, मगर दीवार नहीं टूटी क्योंकि सीमेंट की थी। फिर मैंने गुस्से से पांव पटक दिया, मगर सड़क कंक्रीट की थी, उस पर भी गड्ढा नहीं पड़ा। तो मैंने बिजली के चेंबर को एक जोर का घोंसा दिया, मगर वो फौलाद का बना हुआ था, इसलिए उसका रद्द अमल भी हमदर्दी का साबित न हुआ। चलते चलते सहपहर के करीब मुझे सख्त भूख लगी तो मैं एक स्पोर्ट्स की दुकान में घुस गया। दुकान में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस के सामान के साथ साथ कांच के एक खूबसूरत बॉल में गोल गोल सफेद रसगुल्ले रखे हुए थे। मैंने उनकी तरफ इशारा करके दुकानदार से कहा, बड़े अजीब हो, स्पोर्ट्स के दुकान पर रसगुल्ले रखते हो। वो बोला, ये बम्बई है, यहाँ सब चलता है। मैंने कहा, मुझे 2 रुपए के रसगुल्ले दो। उसने 2 रुपए लेकर कांच के बाउल में से 2 रसगुल्ले निकाले। मैंने कहा, बाजार में तो रसगुल्ला 2 आने का 1 मिलता है। वो बोला, ये स्पेशल टाइप के रसगुल्ले हैं। मैंने कहा, तो फिर चार दे दो। उसने मुझे एक लिफाफे में 4 रुपए के 4 रसगुल्ले डालकर दे दिए। मैं लिफाफा लेकर बाहर निकल आया। आगे बढ़ा तो एक जौहरी के दुकान पर बड़े उम्दा और खूबसूरत केले नजर आए, हरे भरे और खूब मोटे ताजे चमकते हुए। मैंने कहा, तुम भी अजीब आदमी हो, जौहरी के दुकान पर केले रखते हो। वो बोला, सोना बेचना मना है, इसलिए केले बेचता हूँ। मैंने पूछा, क्या भाव दोगे? 6 रुपए दर्जन, उसने जवाब दिया। 6 रुपए दर्जन? मैंने हैरत से चिल्लाकर कहा। 12 आने दर्जन के हिसाब से बाजार में जितने केले चाहे खरीद लो। वो बोला, ये स्पेशल टाइप के केले हैं। मैंने कहा, अच्छा तो 1 दर्जन दे दो। उसने 1 दर्जन केले एक बड़े से लिफाफे में डालकर मेरे हवाले किए। मैं दुकान के बाहर निकल आया और मेट्रो सिनेमा के सामने के मैदान में चला गया कि खुली धूप में हरी भरी घास पर बैठकर अपना खाना खा लूं। घास पर एक कोने में दूसरे लोगों से अलग थलग एक जगह तलाश करके बैठ गया और अपने दोनों लिफाफे खोलने लगा। सबसे पहले मैंने रसगुल्लों वाला लिफाफा खोला और एक रसगुल्ला निकाल कर अपने मुँह में डाला। मुँह में डालते ही कच किसी आवाज़ पैदा हुई और मुझे मालूम हुआ, जिसे मैं रसगुल्ला समझ रहा था वो दरअसल पिंग पोंग का एक गेंद था, रियान का बना हुआ। मैंने मायूस होकर जल्दी से दूसरा लिफाफा खोला केला खाने के इरादे से, तो मालूम हुआ कि उस लिफाफे के अंदर जितने केले थे वो सब प्लास्टिक के बने हुए थे। अब क्या किया जाए, अब क्या हो सकता है, मैंने सोचा। पैसे तो मैंने खर्च कर चुके थे, अब जो कुछ मिल गया है खुदा का शुक्र अदा करके खा लेना चाहिए और ऊपर से पानी पी लेना चाहिए। चुनांचे मैंने रियान के रसगुल्ले और प्लास्टिक के केले चबा चबा कर खा डाले, क्योंकि रिस्क की बेइज्जती नहीं हो सकती और रिस्क के लिए ही तो मैं बम्बई आया था। खाते ही मुझे बेहद प्यास लगी और पेट में अजीब सी ऐठन होने लगी। इतने में करीब से एक छोकरा गुजरा, उसके हाथ में एक मैला सा थैला था और वो करीब आकर धीरे से कहने लगा, पानी ले लो, ये 2 रुपए में बांट ली। मैंने उसे अपने करीब बुलाया और उसे पूछा, क्या लूट मची है बंबई में, पानी की बाटली 2 रुपए में बेचते हो? वो बोला, ये जोसेफ का पानी है। मैंने उसे पूछा, ये जोसेफ कौन है? वो बोला, हमारा मालिक है। तो 2 रुपए में 1 पानी की बाटली क्यों बेचते हो, जबकि रॉजर्स का ऑरेंज 4 आने में मिलता है? वो बोला, मगर ये स्पेशल टाइप का पानी है, पहली धार का। मैंने पहली धार का पानी आज तक नहीं चखा था। चलो आज ये भी हो जाए। जेब में 100 के नोट के अलावा अभी 2 रुपए बाकी थे, लिहाजा 1 बाटली खरीद कर हलक में उंडेल दी। हलक में जाते ही ऐसा लगा जैसे चारों तबक रोशन हो गए हो, दिमाग में जितने जाले थे सब साफ हो गए, हर चीज रोशन वाजे अपनी सही सूरत में दिखाई देने लगी। मैं एक छलांग लगाकर अपनी जगह से उठ बैठा और 100 के नोट को अपनी मुट्ठी में लेकर सीधा कालबा देवी रोड पर कॉटन एक्सचेंज की तरफ भागने लगा। कॉटन एक्सचेंज के अंदर अजब भगदड़ मची हुई थी, गुल गपाड़ा, नोच खसोट, लोग एक दूसरे के करीब 1-1 फुट के फासले पर खड़े होकर इस तरह चिल्लाते थे जैसे उनका मुखातिब उनके 1000 गज की दूरी पर हो। वो चीख चीख कर कह रहे थे, लिया दिया, बेचा खरीदा, मंदी चढ़ती, 7 ऊपर 8 नीचे, 40,000 गांठे, 70,000 गांठे, 1.5 लाख, 2 लाख। मैं गुस्से से चिल्लाया। एक दलाल मेरे पास आया, बोला, बेचते हो? हाँ बेचता हूँ, मैंने गुर्रा कर कहा, और खरीदता भी हूँ। किस भाव से? उसने मुझे शाने से पकड़ लिया ताकि मैं भाग के किसी दूसरी दलाल के पास ना चला जाऊँ। 7 ऊपर 9 नीचे, मैंने बुलंद आवाज में कहा। 7 ऊपर 9 नीचे? वो खुशी से चिल्लाया जैसे मेरे बात का यकीन न आया हो। हाँ 7 ऊपर 9 नीचे, मैंने उसे दोहरा कर कहा। दलाल खुशी से चिल्लाया, 2 लाख गांठ है। फिर एकदम रुककर मेरी तरफ देखकर बोला, किसकी? अकल की। अकल की? कोई नया ब्रांड है रुई का? उसने मेरी तरफ शुभे की नजरों से देखते हुए पूछा। स्पेशल टाइप का ब्रांड है ये, मैंने जवाब दिया। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम चरित्रामन कंपनी के आदमी हो ना? और किसका दिखाई देता हूं तुम्हें, मैंने गरज कर कहा। पहचानते भी नहीं हो? उसने मेरा कंधा थपथपाया और कहा, ऐसे ही पूछ लिया था साहब जी, खातरी कर लेना अच्छा होता है। फिर वो मुझे छोड़कर आगे बढ़ गया और अपने से 3 फुट के फासले पर खड़े हुए आदमी के कान में अपना पूरा हलक फाड़ कर बोला, 2 लाख गांठ है चरित्रामन कंपनी, 2 लाख गांठ है, 7 ऊपर 9 नीचे। मैंने लुकमा दिया और बीच में सिफर। वो चिल्लाता हुआ आगे भीड़ में गायब हो गया। तो कोई आधे घंटे तक मैं भीड़ के किनारे बाहर ये गुलगपाड़ा देखता रहा और जब मैं मायूस हो गया कि ये दलाल वापस नहीं आएगा तो मैं बाहर जाने के लिए मुड़ा। इतने में वो दलाल भीड़ को चीरता हुआ दौड़ता दौड़ता मेरे पास आया और आकर उसने मेरे हाथ में 62,000 के नोट थमा दिए। बोला, मैंने इसमें से कमीशन की कटौती नहीं की है। मैंने कहा, तो कर लो ना। सेठ को बोले बगैर? उसने जरा हैरत से कहा। मैं सेठ को बोल दूंगा, वो पूना गया है। अच्छा तो 2,000 दे दो। 2,000 कटौती के देकर मैं 60,000 लेकर कॉटन एक्सचेंज से निकला और कॉटन एक्सचेंज के बाहर टैक्सी में बैठकर मैंने टैक्सी वाले से कहा, चलो बंबई के बाहर कहीं भी ले चलो। और मैंने दिल में सोचा, अब चरित्रामन कंपनी और मेरे दरमियान जितना भी फासला ये टैक्सी जितनी भी जल्दी तय कर दे उतना ही अच्छा है। बैंडा के करीब पहुंचकर मुझे बड़े जोर से पेशाब लगा। मैंने इधर उधर देखा, कुछ समझ नहीं आया। फिर टैक्सी के फर्श पर निगाह डाली मगर टैक्सी का ड्राइवर एक भारी भरकम मुछैल पठान था, इसलिए मैं घुटने दबाकर बैठ गया और टैक्सी वाले से कहा, लिंकिंग रोड पर फौरन ले चलो। क्योंकि मुझे याद आ रहा था कि लिंकिंग रोड पर सड़क के दो तरफ बहुत से प्लॉट खाली थे जहां अभी तक बिल्डिंगें नहीं बनी थी। टैक्सी वाले ने सह पाकर जोर से भगाई। एक खाली प्लॉट के करीब जाकर मैंने कहा, टैक्सी रोक दो। टैक्सी रुकते ही मैं तीर की तरह टैक्सी से निकला और भागता हुआ खाली प्लॉट के करीब जाकर अंदर चला गया। अंदर जाते ही एक आदमी मेरा रास्ता रोक के खड़ा हो गया। शक्लो सूरत से सिंधी मालूम होता था। तुम क्या प्लॉट खरीदने को आया है? उसने मुस्कुराकर कहा। मैंने जल्दी से कहा, हाँ मगर आगे से हट जाओ जरा। कितने में लोगे? वो फिर मेरा रास्ता रोककर बोला। जितने में दे दो, मैंने कहा, मगर मैं बहुत जल्दी में हूँ इस वक्त, आगे से हट जाओ, मुझे जरा फारिग हो लेने दो। भाई इतनी जल्दी कैसे फारिग होगा? वो सिंधी अपनी बाछें खिलाते हुए बोला। ये प्लॉट सेठ शुरशुरवानी का है, 1.5 लाख में मिलेगा, 25,000 एडवांस लेगा हम, आज एडवांस देकर सौदा पक्का कर जाओ, बाकी कल दे देना। हम सेठ शुरशुरवानी को, अबे ज्यादा शुरशुरवानी मत कर, मुझे तहरीक होती है, मैं बेकरार होकर चिल्लाया और जेब से 26,000 के नोट निकाल कर बोला, ये ले 25,000 रुपए एडवांस के और रास्ते से हट और प्लॉट देखने दे। मैंने जल्दी से उसे 25,000 रुपए दे दिए और प्लॉट में पेशाब करने लगा। उसके बाद शेर शुरशुरवानी का एजेंट मुझे अपने ऑफिस ले गया और उसने 25,000 की रिसीट मुझे देकर कहा, ये रिसीट लेकर जाओ और कल 3 बजे हमारा शेर शुरशुरवानी इधर आएगा, प्लॉट का कागज तुम्हारे हवाले कर देगा। मैंने बादिले नखास्ता रसीद ले ली। अब क्या हो सकता है, मैंने 25,000 में पेशाब किया था, दुनिया का सबसे महंगा पेशाब, प्लॉट खरीदने के लिए बाकी रुपए मेरे पास कहाँ थे। इसलिए मैंने रसीद जेब में डाली और कल आने का वादा करके रुखसत होने ही वाला था कि दफ्तर के बाहर एक कार आकर रुकी और एक मोटा गंदुमी रंग का आदमी जर्द टेरलीन का सूट डांटे हुए भागता भागता अंदर आया और हामते हामते बोला, ओ गर्दवानी, 3 नंबर 5 का प्लॉट बेचा तो नहीं तूने? गर्दवानी सर से पांव तक मुस्कुराहट बन गया। 25,000 के नोट उस आदमी के हाथ में थमाते हुए बोला, सौदा हो गया, 25,000 एडवांस मिल गया है सेठ, ये लो। कितने में बेचा?
वही जितने में आपने बोला था, पूरे 1.5 लाख, एक कम ना एक ज्यादा।
उस आदमी ने अपना माथा पीट लिया, बोला, वो सेठ मूलचंद को इधर सिनेमा बनाने का परमिट मिल गया है, वो इधर सिनेमा बांधेगा, 4 लाख में प्लॉट लेता है हमारा।
हम तो इसे दे चुका है सेठ शुरवानी, गर्दवानी के चेहरे का बल्ब बुझ चुका था।
और रसीद मेरे पास है, मैंने सेठ शुरवानी को रसीद दिखाते हुए कहा।
ओह,
सेठ के मुंह से एक बेख्तियार मायूसी के लहजे में एक गहरी आह निकली। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक कुर्सी में गिरा दिया और खुद खरीब में एक कुर्सी खींचकर बोला,
सेठ तुम हमारा नुकसान मत करो, ये सौदा कट कर दो।
मैं क्यों करूं? मैंने बड़ी मजबूती से इनकार किया।
हम तुमको इससे 1,000 गज बड़ा और जास्ती जमीन का प्लॉट इधर बाजू में देता है।
नहीं, हमको यही जमीन चाहिए। मेरे लहजे में भी चाबुक की सी तेजी आ गई। सेठ शुरवानी बेबसी से मेरी तरफ देखने लगा, फिर बोला,
हम तुमको तुम्हारे 25,000 रुपए के साथ 50,000 रुपए अपनी तरफ से वापस करता है, पूरे 50,000।
हमको 50,000 नहीं चाहिए सेठ, यही जमीन चाहिए।
अच्छा 60,000 ले लो।
मैंने कहा नहीं।
70?
मैंने कहा नहीं।
तो क्या लोगे तुम?
सेठ शुरवानी अपने माथे का पसीना पोंछने लगा। उसके चेहरे से एक अजीब सी बू आ रही थी, जो उन पैसों से आती है जो बहुत देर तक किसी के मुट्ठी में दबे रहे।
50-50,
मैंने कहा। वो अनजान होकर बोला,
50-50 क्या?
मैंने कहा, तुम इस जमीन की कीमत 1.5 लाख लगाता था, मगर अब तुमको इसका 4 लाख मिलता है, इसलिए 1.5 लाख के ऊपर जो तुमको मुनाफा मिलता है वो आधा तुम ले जाओ, आधा हमको दो। सेठ चुशुरवानी कुछ देर तक तेज निगाहों से मेरी तरफ देखा, फिर उसने मेरे 25,000 के नोट अपने जेब में डाल लिए। उसके बाद उसने अंदर की जेब टटोलकर एक बटुआ निकाला और उसमें 1-1 लाख के नोट निकाले, फिर 25,000 रुपए मेरे वाले निकाले और फिर 1.25 लाख रुपए मेरे हाथ में थमाकर बोला,
सेठ तुम्हारी तकदीर अच्छी थी, ये रुपए तुम ले जाओ फुकट में और मेरी जमीन छोड़ दो।
मैं ये 1.25 लाख रुपए अपनी जेब में डालकर वहां से चला आया। बचपन में मुझे अपने गांव में बर्फ के गोले बनाने का बहुत शौक था। जब बर्फ पड़कर थम जाती थी, मैं घर के बाहर घाटी पर निकलकर बर्फ का गोला बनाकर उसे घाटी पर लुढ़काता था और बर्फ का गोला बड़ी तेजी से लुढ़कता जाता था और आसपास की बर्फ को अपने अंदर समेटते हुए बड़ा होता जाता था। यही हाल रुपए का है। 1,60,000 रुपए का गोला बनाकर मैंने जो बंबई की घाटी पर लुढ़काना शुरू किया, तो रुपए के साथ रुपया मिलता चला गया और अब तो इतना बड़ा गोला बन चुका है उसका कि मेरे संभाले से भी नहीं संभलता। आजकल मेरा शुमार बंबई के बड़े बड़े लखपतियों में होता है। चंद दिन हुए मुझे भागरा यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की एजाजी डिग्री अदा की थी। डिग्री देते वक्त यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं लड़कों को अपनी कामयाबी का राज बताऊं। उस समय तकरीर करते वक्त मैंने तलबा से कहा था, लखपति बनने का एक ही नुस्खा है, मेहनत करो, मेहनत करो और दुनिया में ईमानदारी से जियो। मुझे उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म और इस हिस्से को पढ़ने वाले ज़रूर मेरी नसीहत पर अमल करेंगे और बड़े अच्छे क्लर्क साबित होंगे।
Like this Sochcast? Tune in for more with the Sochcast app from the Google Play Store.